एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसे विषय में जिससे हम सब रोज मतलब रोज ही जूझते हैं, हमारी याददाश्त, हमारी स्मृति।
हाँ बिल्कुल,
खास तौर पर हम डैनियल एल शैक्टर की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है स्मृति के साथ दोष, भूलना और याद रखना, उसके जरिए से समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, और ये किताब ये इसलिए खास है क्योंकि ये हमारी मेमोरी के बारे में जो बनी बनाई सोच है ना, उसको चैलेंज करती है।
हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि भाई भूल जाना या कुछ गलत याद रखना ये हमारे दिमाग की कोई गड़बड़ी है।
हाँ, जैसे चाबियां रखकर भूल गए।
हाँ, या किसी का नाम याद नहीं आ रहा, या कोई पुरानी बहस हमें कुछ और तरह से याद है, दूसरे को कुछ और, ये सब हमें परेशान करता है।
करता है।
पर ये किताब बताती है कि ये गड़बड़ियां शायद उतनी गड़बड़ हैं ही नहीं।
हाँ, और यही यही आज की हमारी बातचीत का कह सकते हैं सार है। क्या हो अगर मेमोरी की ये जो कमियां कही जाती हैं वो असल में कमियां न होकर हमारे दिमाग के डिजाइन का एक जरूरी हिस्सा हो। शैक्टर का तर्क है कि ये असल में विकास के क्रम में बने अनुकूलन मतलब अडेप्टेशंस के साइड इफेक्ट्स हैं।
अच्छा,
तो ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
हाँ, पर इस दिलचस्प विचार को समझने से पहले इसके पीछे जो दिमाग है, जो लेखक हैं, उनको जानना भी जरूरी है।
बिल्कुल,
डैनियल एल शैक्टर कोई ऐसे ही लेखक नहीं है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और दुनिया भर में ह्यूमन मेमोरी याददाश्त और एमनीजिया यानी भूलने की बीमारी पर मतलब बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते हैं।
सही कहा, उनका काम तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में दशकों तक फैला हुआ है। 300 से ज्यादा साइंटिफिक लेख और कई महत्वपूर्ण किताबें जैसे सर्चिंग फॉर मेमोरी उनके नाम है। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे हैं,
नहीं नहीं,
ये उन लैब्स में काम कर रहे हैं जहां मेमोरी को समझने के प्रयोग होते हैं।
एग्जैक्टली, और यही बात इस किताब को खास बनाती है। शैक्टर सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं है, वो इस खोज के मतलब लीडर हैं एक तरह से। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो लैब में होने वाले जटिल शोध, ब्रेन स्कैनिंग से मिली जानकारी और असल जिंदगी के उदाहरणों को,
हाँ जैसे किससे कहानियां,
हाँ जैसे किसी मरीज की कहानी या रोजमर्रा की भूलने की घटनाएं, इनको एक साथ पिरोकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हमें आसानी से समझ आ जाती है। वो मुश्किल चीजों को दिलचस्प बना देते हैं।
तो अब आते हैं किताब के मूल विचार पर, मतलब इसका बड़ा संदेश क्या है?
देखो, ये किताब असल में हमें अपनी याददाश्त को एक नए चश्मे से देखना सिखाती है।
अच्छा,
शैक्टर कहते हैं कि जिन्हें हम मेमोरी के पाप या दोष समझते हैं, जैसे भूलना, यादों का बदल जाना या उन यादों का पीछा न छोड़ना जिन्हें हम भूलना चाहते हैं,
हाँ वो अनचाही यादें,
हाँ वो सब असल में उन दिमागी प्रक्रियाओं की कीमत हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं।
वाओ, ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है।
एकदम सही। किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि हमारी मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डर की तरह नहीं है कि बस अतीत को जस का तस रिकॉर्ड किया और प्लेबैक कर दिया। नहीं, ये एक बहुत ही लचीली, डायनामिक और पुनर्रचनात्मक यानी रिकंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है।
पुनर्रचनात्मक मतलब?
मतलब हम हर बार याद करते समय उस याद को दोबारा बनाते हैं, उसे थोड़ा बदलते हैं।
अच्छा, हर बार?
हाँ, हर बार। और ऐसा क्यों? क्योंकि शैक्टर के अनुसार मेमोरी का मुख्य काम अतीत को सहेजना नहीं बल्कि भविष्य के लिए हमें तैयार करना है।
ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, मेमोरी भविष्य के लिए है,
है ना? और इसी नजरिए से शैक्टर ने मेमोरी की आम समस्याओं को 7 श्रेणियों में बांटा है जिन्हें वो मजेदार ढंग से 7 दोष कहते हैं।
7 सिंस।
हाँ
हाँ,
पर ये कोई नैतिक पाप नहीं है, ये बस मेमोरी सिस्टम के काम करने के वो तरीके हैं जो कभी कभी हमें गड़बड़ लगते हैं। इनको मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है।
अच्छा, कैसे?
हाँ, पहले हैं 3 चूक के दोष, सिंस ऑफ ओमिशन, यानी जहां मेमोरी हमें धोखा दे जाती है, हम कुछ भूल जाते हैं।
जैसे?
1 क्षणिकता, ट्रांजियंस, समय के साथ यादों का फीका पड़ जाना। 2 अनमनापन, एब्सेंट माइंडेडनेस, ध्यान ना देने के कारण मेमोरी का ना बनना या याद ना आना।
अच्छा।
और 3 अवरोधन, ब्लॉकिंग, जानकारी याद होते हुए भी सही समय पर जबान पर ना आना, वो टिप ऑफ द टंग वाली फीलिंग।
अरे हाँ, वो तो बहुत होता है।
हाँ।
और दूसरे टाइप के दोष कौन से हैं?
दूसरे हैं तीन कमीशन के दोष, सेंस ऑफ कमीशन, जहां मेमोरी मौजूद तो है पर उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ मिलावट है।
मिलावट मतलब?
मतलब जैसे चौथा गलत रोपण या मिस एट्रीब्यूशन, याद तो है पर ये याद किसकी है, कहां से आई, ये गलत याद है, सोर्स भूल गए या गलत याद है।
ओहो।
पांचवा सुझावनीयता, सजेस्टिबिलिटी, दूसरों के कहने या सुझाव से हमारी यादों का बदल जाना।
ये भी खतरनाक लग रहा है।
हाँ। और छठा पूर्वाग्रह, बायस, हमारी आज की सोच, भावनाएं या विश्वास का हमारी पुरानी यादों को रंग देना या बदल देना।
अच्छा, मतलब हम अतीत को आज के हिसाब से देखते हैं।
हाँ, काफी हद तक। और एक सातवां दोष है जो इन सब से थोड़ा अलग है।
वो क्या है?
सातवां है स्थायित्व, परसिस्टेंस, यानी वो यादें जो जाती ही नहीं, खासकर दर्दनाक या परेशान करने वाली, जिन्हें हम भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते।
हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है।
तो किताब में शैक्टर इन सातों दोषों को बड़े दिलचस्प उदाहरणों से समझाते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स, दिमागी चोट वाले मरीजों की केस स्टडीज और हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े किस्से। और हर दोष के साथ वो ये सवाल पूछते हैं, भाई क्या इसका कोई फायदा भी हो सकता है?
हाँ।
क्या ये किसी अच्छी चीज का साइड इफेक्ट है?
अच्छा, तो मतलब हर कमी का कोई छुपा हुआ फायदा।
हाँ, यही तो उनका तर्क है। तो चलिए अब एक एक करके इन दोषों को करीब से देखते हैं और उनके पीछे छिपे फायदों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले वाले से, क्षणिकता से।
हाँ, क्षणिकता, ट्रांजियंस, मतलब समय के साथ यादों का धुंधला पड़ना। ये तो शायद सबसे आम अनुभव है हमारा।
बिल्कुल।
आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था शायद याद हो, पर पिछले मंगलवार मुश्किल है।
हाँ, हामन एबिंगहॉस नाम के मनोवैज्ञानिक ने तो बहुत पहले ही फॉरगेटिंग कर्व दिखा दिया था। हम सीखने के तुरंत बाद तेजी से भूलते हैं, फिर धीरे धीरे।
लेकिन शैक्टर कहते हैं रुकिए, इसे सिर्फ एक कमी मत समझिए।
हाँ।
सोचिए अगर हमें अपनी जिंदगी का हर पल, हर छोटी बड़ी बात, हर चेहरा, हर नाम, हर एहसास हूबहू याद रहता, हमारा दिमाग तो जानकारी के बोझ तले दब जाता। क्षणिकता एक तरह का फिल्टर है।
फिल्टर
कैसे?
ये पुरानी कम इस्तेमाल होने वाली जानकारी को हटाकर नई और जरूरी बातों के लिए जगह बनाती है। ये हमें गैर जरूरी चीजों से आजाद करके वर्तमान पर ध्यान देने में मदद करती है। तो भूलना भी जरूरी है।
वाह, ये तो सोचा ही नहीं था।
भूलना जरूरी है ताकि याद रख सकें। अब दूसरा दोष, अनमनापन, एब्सेंट माइंडेडनेस।
हाँ, ये वो है जब हम ध्यान न देने की वजह से कुछ भूल जाते हैं। चाबियां कहाँ रख दी, फ्रिज का दरवाजा बंद किया था, मीटिंग में क्या तय हुआ था।
रोज की कहानी है ये तो।
बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई काम आधे अधूरे मन से करते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को ठीक से एनकोड ही नहीं करता, मतलब मेमोरी में दर्ज ही नहीं करता। ये शैलो एनकोडिंग है।
लेकिन क्या इसका भी कोई फायदा है? शैक्टर एक दिलचस्प संभावना बताते हैं।
क्या?
शायद ये क्षमता हमें रोजमर्रा के ऑटोमेटिक काम करते हुए, जैसे गाड़ी चलाना या बर्तन धोना भी, अपने दिमाग को किसी गहरी सोच या प्लानिंग में लगाए रखने की छूट देती है।
अच्छा, मतलब मल्टीटास्किंग जैसा।
हाँ, एक तरह से हमारा ध्यान बढ़ जाता है और कभी कभी हम कुछ भूल जाते हैं। इसका एक मशहूर उदाहरण वो महान सेलिस्ट योयो मा का है।
हाँ हाँ, सुना है।
जो एक बार टैक्सी में अपना करोड़ों का सेलो भूल गए थे।
अरे।
उनका ध्यान शायद संगीत की गहराइयों में था, टैक्सी के सेलो पर नहीं। तो अनमनापन शायद हमारे क्रिएटिव या एब्स्ट्रैक्ट सोच के लिए जरूरी भटकाव है।
वाह, ये तो सोचने का एकदम नया तरीका है, कमाल है। तीसरा दोष है अवरोधन, ब्लॉकिंग।
हाँ, ये वो परेशान करने वाली स्थिति है जब कोई नाम, कोई शब्द या कोई जानकारी हमारी जबान पर होती है।
हाँ हाँ,
हमें पक्का पता है कि हमें ये मालूम है पर वो बाहर नहीं निकलती। इसे टिप ऑफ द टंग या टीओटी फिनोमिनन कहते हैं।
उफ, इससे बहुत झुंझलाहट होती है।
होती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब मिलती जुलती कई यादें एक साथ दिमाग में उमड़ पड़ती हैं और सही वाली को रोक देती हैं।
अच्छा, जैसे कॉम्पिटिशन हो रहा हो यादों के बीच।
हाँ बिल्कुल, जैसे आप किसी पुराने सहकर्मी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हों और दिमाग में उसी ऑफिस के 10 और लोगों के नाम घूमने लगे। शैक्टर बताते हैं कि ये ब्लॉकिंग शायद इसलिए होती है क्योंकि हमारा मेमोरी सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली या सबसे मजबूत याद को प्राथमिकता देता है। ये एक तरह की दिमागी ट्रैफिक व्यवस्था है जो कभी कभी जाम हो जाती है।
ट्रैफिक जैम।
हाँ, लेकिन ज्यादातर सबसे जरूरी जानकारी को तेजी से बाहर निकालने में मदद करती है।
अच्छा, तो अब आते हैं कमीशन के दोषों पर, जहां मेमोरी है तो सही पर उसमें कुछ मिलावट है। चौथा दोष गलत रूपण, मिस एट्रीब्यूशन।
हाँ, गलत रूपण। यहाँ हम जानकारी या घटना को तो याद रखते हैं, पर उसका स्रोत गलत याद रखते हैं।
स्रोत मतलब?
मतलब ये कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने बताया, या ये विचार मेरा था या किसी और का, इसमें गड़बड़ हो जाती है।
अरे, इसके तो बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिर
हो सकते हैं, जैसे अनजाने में किसी और की कविता या आइडिया को अपना समझ लेना, इसे क्रिप्टोमनेजिया कहते हैं।
अच्छा।
या किसी निर्दोष इंसान को अपराधी समझ लेना क्योंकि उसका चेहरा किसी और संदर्भ में देखा था, फॉल्स रिकग्निशन। एक बहुत ही चौंकाने वाला केस है डोनाल्ड थॉम्सन का। वो एक मेमोरी रिसर्चर थे।
हाँ।
एक महिला ने उन पर यौन हमले का आरोप लगाया। बाद में पता चला कि हमले के समय वो महिला टीवी पर थॉम्सन का इंटरव्यू देख रही थी।
क्या?
हाँ, और उसने अनजाने में उनके चेहरे को हमलावर के चेहरे से जोड़ दिया।
ये तो डरावना है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग क्या हुआ, कंटेंट, और ये कब, कहाँ, किसके साथ हुआ, कॉन्टेक्स्ट सोर्स को अलग अलग स्टोर करता है।
बिल्कुल।
और याद करते समय इन्हें जोड़ने में गलती हो सकती है। ये मेमोरी के पुनर्रचनात्मक स्वभाव का एक और सबूत है।
और इसी से जुड़ा है पांचवां दोष, सुझावनीयता।
सजेस्टिबिलिटी।
हाँ, इसका मतलब है कि बाहरी सुझाव, चाहे वो किसी सवाल पूछने के तरीके से आए हों या किसी और की बातों से, हमारी अपनी यादों में घुसकर उन्हें बदल सकते हैं। हमारी यादें उतनी पक्की नहीं होती जितना हम सोचते हैं।
मतलब कोई हमारी याद बदल सकता है?
हाँ, अनजाने में भी। इस फील्ड में एलिजाबेथ लॉफ्टस का काम तो मतलब क्रांतिकारी है।
हाँ, उनका नाम सुना है मैंने।
उन्होंने दिखाया कि कैसे मामूली से बदलाव से लोगों की यादें गढ़ी जा सकती हैं। उनके एक क्लासिक प्रयोग में लोगों को कार एक्सीडेंट का वीडियो दिखाया गया। जब पूछा गया कि कारें एक दूसरे से कितनी तेज टकराई, हिट, तो लोगों ने कम स्पीड बताई। पर जब पूछा गया कि कितनी तेज जोर से भिड़ी, स्मैश्ड,
अच्छा, शब्द बदल दिया बस।
हाँ, बस शब्द बदला, तो लोगों ने ज्यादा स्पीड बताई, और कुछ ने तो टूटे कांच देखने का भी दावा किया जो वीडियो में था ही नहीं।
अरे बाप रे, सोचिए इसका कानूनी मामलों में क्या मतलब है। प्रत्यक्षदर्शी गवाही कितनी अविश्वसनीय हो सकती है।
बिल्कुल। थेरेपी में भी ये खतरनाक हो सकता है, जहां अनजाने में झूठी यादें बन सकती हैं।
लेकिन शैक्टर यहां भी कोई फायदा देखते हैं क्या?
हाँ, वो एक संभावित अनुकूलन देखते हैं। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग नई जानकारी को पुरानी यादों के साथ जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ताकि हमारी समझ विकसित होती रहे। ये लचीलापन कभी कभी हमें भटका देता है।
समझ रही हूँ। छठा दोष है पूर्वाग्रह, बायस। ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है।
हाँ, ये बताता है कि कैसे हमारी आज की भावनाएं, विश्वास और ज्ञान हमारे अतीत की यादों को अनजाने में रंग देते हैं या बदल देते हैं। हम अतीत को अक्सर अपने वर्तमान के चश्मे से देखते हैं।
अच्छा।
जैसे?
हाँ,
जैसे संगति पूर्वाग्रह, कंसिस्टेंसी बायस। हमें लगता है कि हम पहले भी वैसा ही सोचते थे जैसा आज सोचते हैं, भले हमारे विचार बदल गए हों।
हाँ हाँ होता है ऐसा।
या आत्मकेंद्रित पूर्वाग्रह, ईगोसेंट्रिक बायस। हम घटनाओं को इस तरह याद करते हैं कि हमारी भूमिका ज्यादा अच्छी या ज्यादा महत्वपूर्ण लगे।
हाँ, ये भी होता है।
या फिर वो मशहूर हाइंडसाइट बायस। अरे, मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा होगा, जबकि शायद हमें पहले पता नहीं था।
हाँ, ये तो बहुत कॉमन है।
इन पूर्वाग्रहों का एक मकसद हो सकता है ये, हमें अपनी जिंदगी को एक सुसंगत कहानी की तरह देखने में मदद करते हैं, हमारे आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और हमें दुनिया को समझने लायक बनाते हैं।
अच्छा।
भले ही ये यादें ऐतिहासिक रूप से 100% सच्ची ना हो, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो सकते हैं।
वाह, मतलब हमारे दिमाग का खुद को संभालने का तरीका है।
एक तरह से हाँ। और आखिर में सातवां दोष, जो बाकी सबसे अलग है, स्थायित्व, पर्सिस्टेंस।
हाँ, पर्सिस्टेंस, ये भूलने की अक्षमता है।
बिल्कुल। ये उन अनचाही घुसपैठ करने वाली यादों के बारे में है जिन्हें हम दिलों जान से भूलना चाहते हैं, पर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, खासकर दर्दनाक, शर्मनाक या भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र यादें।
हाँ।
इसका गहरा ताल्लुक भावनाओं से है। जब कोई घटना बहुत भावनात्मक होती है, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, एमिग्डला,
एमिग्डला।
हाँ, एमिग्डला, वो उस याद पर एक मजबूत भावनात्मक टैग लगा देता है।
अच्छा।
विकास की दृष्टि से ये बहुत जरूरी था। खतरनाक शिकारी या जहरीले फल को याद रखना जान बचाने के लिए अहम था।
सही बात है।
लेकिन आज की दुनिया में यही तंत्र PTSD, यानी पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन या फोबिया जैसी स्थितियों में परेशानी का सबब बन जाता है। वो यादें इतनी मजबूत होती हैं कि भूलना नामुमकिन सा लगता है।
ये तो बहुत मुश्किल स्थिति होती होगी। तो ये थे स्मृति के साथ दोष। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो कुछ बड़े और महत्वपूर्ण संदेश उभर कर सामने आते हैं।
हाँ,
ये सिर्फ अलग अलग कमियां नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है।
हाँ, मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश तो यही है जिसे हम बार बार कह रहे हैं, मेमोरी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं बल्कि एक अनुकूलनशील पुनर्रचनात्मक प्रणाली है। भविष्य का अनुमान लगाने, योजना बनाने और समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी है, न कि अतीत का सटीक संग्रहालय बनने के लिए। इसका लचीलापन ही इसकी ताकत है और यही लचीलापन इन दोषों का कारण भी।
और दूसरा अहम संदेश जो मुझे बहुत पसंद आया वो ये कि भूलना उतना ही जरूरी है जितना याद रखना।
बिल्कुल,
ये कोई बीमारी नहीं बल्कि दिमाग का एक सामान्य और स्वस्थ कार्य है। ये हमें गैर जरूरी जानकारी के बोझ से बचाता है, सीखने में मदद करता है और हमें आगे बढ़ने देता है।
हाँ, भारत जैसे देश में जहां परीक्षाओं के लिए रट्टा मारने पर इतना जोर होता है,
हाँ,
ये समझना जरूरी है कि असली समझ रटने से नहीं बल्कि प्रासंगिक जानकारी को बनाए रखने और बाकी को भूलने की क्षमता से आती है।
बिल्कुल सही। तीसरा, हमारी मेमोरी बेहद नाजुक और परिवर्तनशील है।
मैलियबल है,
हाँ, मैलियबल,
ये
हाँ,
पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बाहरी सुझावों, हमारी अपनी भावनाओं और हमारे पूर्वाग्रहों से बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। हमें अपनी यादों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब वो बहुत भावनात्मक हों या उन पर दूसरों का प्रभाव पड़ा हो। ये बात हमारी आपसी बातचीत, रिश्तों,
हाँ, और कानूनी मामलों में भी।
हाँ, कानूनी प्रक्रियाओं के लिए भी बहुत मायने रखती है।
चौथा, ध्यान और मेमोरी का गहरा साथ है।
हाँ, चोली दामन का साथ है। जैसा हमने अनमनापन में देखा, अगर हम किसी चीज पर ध्यान नहीं देते तो वो हमारी मेमोरी का हिस्सा नहीं बनती। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हमारा ध्यान हजार चीजों में बटा रहता है, अच्छी मेमोरी बनाए रखने के लिए ध्यान केंद्रित करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
बात तो सही है। और पांचवा,
और पांचवा, भावनाएं मेमोरी पर एक शक्तिशाली दोधारी तलवार की तरह काम करती हैं।
दोधारी तलवार।
हाँ, खुशी, दुख, डर, ये सब यादों को गहरा और टिकाऊ बना सकते हैं, जैसा हमने स्थायित्व में देखा।
हाँ,
लेकिन ये उन्हें विकृत भी कर सकते हैं, जैसा पूर्वाग्रह में देखा।
अच्छा,
तो भावनाओं के असर को समझना अपनी यादों को बेहतर समझने की कुंजी है।
ये सारे विचार हमें अपनी मेमोरी के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा सोचने को मजबूर करते हैं। अब कुछ ऐसे खास विचारों या कथनों पर बात करते हैं जो इस किताब की आत्मा को पकड़ते हैं।
हाँ, कुछ पंक्तियां हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे शैक्टर का ये कहना कि सात दोष मेमोरी के डिजाइन में खामियां नहीं बल्कि मेमोरी की फायदेमंद विशेषताओं के लिए चुकाई गई कीमत है।
हाँ, ये लाइन तो सब कुछ कह देती है।
ये एक लाइन पूरी किताब का निचोड़ है। ये कमियां असल में अच्छे गुणों के सिक्के का दूसरा पहलू है।
बिल्कुल, और ये भी बहुत गहरा है। मेमोरी अतीत का शाब्दिक पुनरुत्पादन कम और एक कल्पनाशील पुनर्निर्माण ज्यादा है।
कल्पनाशील पुनर्निर्माण,
ये हमें याद दिलाता है कि हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो हम एक तरह से कहानी दोबारा गढ़ रहे होते हैं।
और ये पंक्ति तो खास तौर पर स्थायित्व, पर्सिस्टेंस के संदर्भ में बहुत मायने रखती है। एक दर्दनाक स्थायी स्मृति का कष्ट ये स्पष्ट करता है कि ज्यादा याद रखना हमेशा बेहतर नहीं होता। कई मामलों में भूलना एक वरदान है।
सच में, हम सब एक परफेक्ट मेमोरी चाहते हैं, पर क्या वो वाकई अच्छी होगी? शायद नहीं।
शायद नहीं। और आखिर में ये हमें सावधान करता है, वास्तव में अनुभव की गई बातों और कल्पना की गई, बताई गई या विश्वास दिलाई गई बातों के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है।
ये सुझावनीयता और गलत रोपण के बारे में है। याद दिलाता है कि हमारी सबसे पक्की यादें भी शायद उतनी पक्की ना हो।
एग्जैक्टली। तो ये सब जानकर अब सवाल उठता है कि हम इस ज्ञान का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, मतलब प्रैक्टिकली क्या करें।
हाँ, ये जानना जरूरी है। इसके बहुत सारे व्यवहारिक उपयोग हैं। शिक्षा में, जैसे आपने कहा, क्षणिकता का मतलब है कि सिर्फ एक बार रटने से काम नहीं चलेगा।
हाँ,
हमें स्पेस्ड रिपीटिशन यानी समय समय पर दोहराना होगा और एक्टिव रिकॉल यानी किताब बंद करके खुद से याद करने की कोशिश करनी होगी।
सही।
और अनमनापन हमें सिखाता है कि पढ़ते समय भैया फोन दूर रखो और ध्यान लगाओ, ये कितना जरूरी है।
हाँ हाँ, बिल्कुल। कानूनी क्षेत्र में इसका जबरदस्त असर है। प्रत्यक्षदर्शी गवाही पर कितना भरोसा किया जाए, ये सवाल उठता है। पुलिस पूछताछ की तकनीकें ऐसी होनी चाहिए जो सुझाव देकर झूठी यादें ना पैदा करें। गलत रोपण के खतरों को समझना भी जरूरी है।
और मानसिक स्वास्थ्य और थेरेपी में भी ये बहुत काम का है। थेरेपिस्ट को सावधान रहना होगा कि वो अनजाने में मरीज में झूठी यादें न डाल दें।
हाँ।
स्थायित्व की समझ PTSD या डिप्रेशन के मरीजों की मदद करने में काम आ सकती है, जहां लक्ष्य याद को मिटाना नहीं बल्कि उसके भावनात्मक असर को कम करना होता है।
सही। और अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने से हम अपने अतीत को ज्यादा संतुलित ढंग से देख सकते हैं।
और व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है सबसे पहले तो अपनी मेमोरी की छोटी मोटी चूकों के लिए खुद पर कम सख्त होना।
हाँ यार बिल्कुल।
ये जानना कि भूलना सामान्य है थोड़ी राहत देता है। हम ध्यान बढ़ाने के तरीके सीख सकते हैं, जैसे माइंडफुलनेस। हम अपने पूर्वाग्रहों के बारे में ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। और जब किसी दोस्त या परिवार वाले को कोई घटना हमसे अलग तरह से याद हो,
हाँ,
तो हम ज्यादा सहानुभूति रख सकते हैं, ये जानते हुए कि भाई दोनों की यादें उनकी अपनी पुनर्रचनाएं हैं।
ये रिश्तों में बहुत काम आ सकता है। कार्यस्थल पर भी जब हम कोई निर्णय ले रहे हों या किसी का प्रदर्शन आंक रहे हों, तो हमें अपने संभावित पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना चाहिए।
जैसे वो हाइंडसाइट बायस, मुझे तो पता ही था।
हाँ वही।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं? आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ा अहम मोमेंट ये समझना था कि एक परफेक्ट फोटोग्राफिक मेमोरी जो कुछ ना भूले वो शायद किसी काम की नहीं होती बल्कि एक बोझ होती है।
हाँ।
भूलने की क्षमता, यादों का बदलना, ये सब असल में हमें एक लचीला और अनुकूलनशील प्राणी बनाते हैं।
हाँ।
ये कमियां नहीं, विशेषताएं हैं।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मेमोरी की इन तथाकथित त्रुटियों को उसकी ताकत के रूप में देखना। ये सिस्टम इसलिए ऐसा है ताकि हम सिर्फ अतीत में न जीते रहें बल्कि उससे सीख कर भविष्य का सामना कर सकें।
ये एक अद्भुत प्रणाली है, अपनी खामियों के साथ ही खूबसूरत और असरदार है। तो सार यही है, हमारी याददाश्त की ये कमियां उसकी अनुकूलन क्षमता का ही प्रमाण है। ये हमें बदलते माहौल में ढलने और भविष्य के लिए तैयार होने में मदद करती हैं।
और अब हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आपकी वो यादें जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, जो आपको एकदम सच्ची लगती हैं, क्या वो वाकई उतनी ही सच्ची हैं जितनी आप मानते हैं?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कैथर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।